अस्सलाम वालेकुम तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर खालिद जहीर साहब मौजूद हैं, और आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला।
वेलकम।
डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने रख देती हूँ। डॉक्टर साहब ने अपनी दीनी तालीम डॉक्टर सार अहमद साहब, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब और जवेद अहमद गांधी साहब से हासिल की है। इसके अलावा आपने इस्लामिक बैंकिंग में PhD की हुई है। डॉक्टर साहब ने चंद बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एज एडवाइजर भी काम किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे आज के सेशन का मौजू है शिद्दत पसंदी और उसकी वजूहात। इससे मुतल्लिक जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं वो हम सर से पूछ लेते हैं। सर, हमारा पहला सवाल है, शिद्दत पसंदी है क्या? मुसलमानों और गैर मुस्लिम की तरफ से होने वाली शिद्दत पसंदी की क्या वजूहात हैं और इनका सामना कैसे किया जा सकता है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, दुनिया के तमाम मामलात में जो इज्तमाईयत से मुताल्लिक हैं बिलुमूम, और दीन मजहब से मुताल्लिक जो बातें हैं, जो तालीमात हैं बिलखुसूस, उनमें अगर तालीमात के बयान और अंडरस्टैंडिंग में ये चीज सामने आ रही हो कि वो इंसान की तबीयत को, जो एक आम इंसान का मयार है तवाजुन का, उससे कुछ हटकर एक एक्सट्रीम की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बाज लोगों के साथ बेजा तौर पर ज्यादती हो रही है और उसकी परवाह भी नहीं की जा रही है, तालीमात में भी ऐसा नजर आ रहा है और फिर तालीमात के मानने वालों के रवैये में भी ऐसा नजर आ रहा है कि कोई एकोमोडेट करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरों की बात सुनने के लिए कोई मौका नहीं है। एक खास नुक्ते नजर है कि जो मालूम होता है कि आम इंसानी कॉमन सेंस की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स एक दूर कहीं दूसरी जानेब जा रहा है, एक्सट्रीम की जानेब। तो यही एक्सट्रीमिज्म है, और इसमें जब लोग लचक देने के लिए तैयार नहीं है और बात सुनने के लिए तैयार नहीं और अपनी बात पर इसरार कर रहे हैं, तो यही वो चीज है कि जिसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। ये दीनी मामलात में भी हो सकता है रवैया और दुनियावी मामलात में भी हो सकता है। ये मुसलमानों में भी होता है, ये गैर मुस्लिमों में भी होता है, जिसमें सभी मुआशरे कम या ज्यादा उसमें मुलविस नजर आते हैं। वजूहात इसकी क्या है? इसकी वजूहात मैं समझता हूं तीन है। एक तो जो तालीमात होती है ना, किसी भी नुक्ता नजर की, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी हो, सेकुलर हो, बाज ओपिनियंस अपनी नेचर में ऐसी हैं, बाज तालीमात ऐसी हैं कि वो नजर आता है कि एक्सट्रीम। मिसाल के तौर पर बाज नजरियात इज्तमाईयत से मुताल्लिक इस बात का तकाजा करते हैं कि पहले एक बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया जाए, उसके बाद हमारा निजाम कायम होगा, उसके बगैर निजाम कायम नहीं होगा। तो अब जाहिर है कि ये तो मालूम ही होता है कि बुनियादी फलसफे सोच नुक्ता नजर की एक्सट्रीमिज्म है। तो वजूहात क्या है? पहली वजह, तालीमात के अंदर इंट्रिंसिक उनकी बुनियादों में कुछ एक्सट्रीमिज्म नजर आती है। दूसरी वजह लोगों का मिजाज है। बाज लोग मालूम होता है कि मिजाजन सख्त और एक्सट्रीमिज्म पसंद होते हैं, और ये जो दूसरी वजह है ये कुछ पहली वजह के साथ मिल जाती है। यानी कुछ होता यूं है कि किसी भी नजरिए में और खास तौर पर मजहबी जो तालीमात हैं उसमें दोनों तरह की बातों की गुंजाइश होती है। जैसे कि अभी हम इस्लामी तालीमात की जब गुफ्तगु मजीद करेंगे तो ये बात सामने आएगी, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल होती है, मगर एक मिजाज होता है कि जो किसी नरम, किसी माकूल, किसी कॉमन सेंस को अपील करने वाली इंटरप्रिटेशन को वो पसंद ही नहीं करता, उसको उस पर इत्मीनान ही नहीं होता। उसका मिजाज ये है कि जब तक कि कोई आखिरी हद की एक्सट्रीम शदीद बात नहीं की जाएगी, तसल्ली नहीं होगी, बात सही हो ही नहीं सकती। तो मैंने गुजारिश की कुछ तालीमात में भी बाज़ोकात आपको गड़बड़ महसूस होती है, और बाज़ोकात क्या है कि लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि वो गड़बड़ पसंद होता है। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि माहौल ऐसा बना दिया जाता है। इसका आप में से बहुत से लोगों को अंदाजा होगा, मर्दों को भी अंदाजा होगा, ख्वातीन को भी अंदाजा होगा कि हमारे यहां मजहबी ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स ऐसे हैं कि वो जब उनमें आप जाएंगे, आप क्यों जाएंगे भाई? इसलिए जाएंगे कि आप परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं भाई? कोई भी परेशानी हो सकती है, नौकरी नहीं है, लोगों से बन नहीं रही है, जहां आप चाहते थे शादी हो वहां शादी नहीं हो रही है, और पता है क्या भाई, कोई भी इंसान को तकलीफ हो सकती है। तो आदमी बेचैन होता है। अब इंसान जाता है कि कहीं मुझे सुकून मिले। आम तौर पर इस तरह के बेचैन रूहें जो हैं वो मजहबी लोगों का टारगेट बनती है। वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और अपने माहौल में लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर, आदमी वहां जाके देखता है सुकून ही सुकून है। एक कोई बड़े साहब हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं और उनकी बात सुन रहे हैं अदब के साथ। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अकबर, और एक सुकून की कैफियत। तो आदमी कहता है कि मुझे अपनी मंजिल मिल गई, मुझे मेरी परेशानियां दूर होने का तरीका मुझे समझ में आ गया। अगर ये हो गया तो समझे कि बस गड़बड़ का आगाज हो गया। उसके बाद ये बताया जाता है कि देखो यही हक है, यही सच्चाई है, इससे अगर अलग तुम कहीं जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो इंसान ये तय कर लेता है कि मैंने इन्हीं की बात माननी है, इन्हीं में रहना है। और फिर उसके बाद जनाब शिद्दत पसंदी आप जितना मर्जी उंडेल के डाल दें, वो इंसान कबूल कर लेता है। सो मैं इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि शिद्दत पसंदी की मेरे नजदीक तीन वजूहात हैं। आई एम श्योर कि आप सब लोग तजर्बेकार हैं और सोचने समझने वाले हैं, आप इसमें और मजीद ऐड करेंगे। एक, कुछ तालीमात के अंदर इस तरह की चीज होती है कि जो शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाती है। दूसरा ये कि इंसानों के मिजाज होते हैं शिद्दत पसंद, और तीसरा कुछ माहौल ऐसा बना दिया जाता है। इनका सामना कैसे किया जाए? मेरे पास इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि जिनके पास वो पैगाम है कि जो शिद्दत पसंदी से पाक है, एक मुतवाजिन, समझ में आने वाला, कॉमन सेंस, इंसानी अकल पर मबनी, उनके ऊपर लाजिम है कि वो उस पैगाम को अच्छी तरह से समझें भी और लोगों के सामने नरमी के साथ, दलाइल के साथ, हिकमत के साथ पेश करें और करते चले जाएं। आप कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता सर, मतलब ये हम कर चुके हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो मैं आपको कहूंगा कि जनाबे अली, फिर आप परेशान ना हो, मतलब आपने, आपको दुनिया का ज्यादा गम है, जिस खालिक ने ये दुनिया बनाई है वो भी तो आखिर बर्दाश्त कर रहा है। तो भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, तुम अपना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, और वो जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह के दीन को सही तरह से आप समझें और उसको समझ कर लोगों तक पहुंचाएं जितना आपके बस में है, और अल्लाह से दुआ करें कि खुदाया इस हमारे काम को बाबरकत और मौसर बना। इसके साथ इस दूसरा सवाल अब आप पूछिए।
इसी आपने जो बात की सर, इसी से मुतल्लिक है अगला सवाल कि शिद्दत पसंदी का ताल्लुक अमूमी तौर पर मजहबी तबकात की तरफ से ही ज्यादा होता है, और कुरान की आयत है अशिद्दाउ अलल कुफार, इसका असल मफहूम क्या है? इस आयत को जिहादी तंजीमें जो हैं वो कुफार के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करती हैं?
मेरा ख्याल है कि सवाल करने वाले ने या तो तकल्लुफ से काम लिया है या इख्तसार से काम लिया है, वरना मैं आपसे गुजारिश करूं कि कुरान मजीद में ऐसी आयात भरी पड़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि कुरान मजीद शिद्दत पसंदी सिखाता है, लेकिन कुरान मजीद को गलत समझने के नतीजे में लाजमन शिद्दत पसंदी पैदा होती है। ये जो आयत आपने पेश की है तो एक आयत है, कुरान मजीद इस तरह की आयात से भरा पड़ा है, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ पैगंबर आप जिहाद कीजिए कुफार से और मुनाफिकीन के साथ और उनके साथ सख्ती कीजिए, और बहुत सी और आयात है। तो ये जब कुरान मजीद लोग पढ़ते हैं और उसमें वो इस तरह से कुफार के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती करने की हिदायत को पढ़ते हैं और फिर उन्हीं हिदायत की रोशनी में कुछ उनको अहादीस में भी मजीद तफसीलात और वाकयात मिल जाते हैं, तो आप यूं समझिए कि एक परफेक्ट एक प्रेजेंटेशन बन जाती है शिद्दत पसंदी के हक में। तो आप फरमाएंगे कि फिर इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब यह है, आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आप कुरान को पढ़ेंगे एक अल्लाह की ऐसी किताब की हैसियत से जिसको अल्लाह ताला ने ऐसे तरतीब दिया है कि जब आप पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं और कुरान के अपने हिदायत के मुताबिक तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं तो आप पर फिर असल हकीकत खुलती है। कुरान मजीद को पढ़ने का मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा उसूल ये है, और ये उसूल ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई आलिम होने की जरूरत है, हर खास आम कुरान के अपने बयान किए हुए इस उसूल को जब पल्ले बांध ले और उसकी रोशनी में कुरान पढ़े। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए जो सबसे अहम उसूल जहन में रहना चाहिए वो ये है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और इसमें कोई तजाद नहीं है। चुनाचे जब आप अल्लाह की किताब पढ़ें और आपको एक जगह एक बात और दूसरी जगह उससे बहुत मुख्तलिफ बात नजर आए तो फिर आप गौर करें और ये समझने की कोशिश करें कि असल बात क्या है, असल हकीकत क्या है। मैं मुख्तसर बात ये कर रहा हूं कि कुरान मजीद पूरे के पूरे को पढ़कर इंसान इस बात इस नतीजे तक पहुंच जाता है कि काफिर उस शख्स को कहते हैं जिसने अल्लाह के पैगाम को समझ लिया, जान लिया कि अल्लाह का पैगाम है और वो जानते बूझते उसका इनकार करता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कहा कि अब ये आपकी नरमी के हकदार नहीं, आप इनके साथ सख्ती करें। ये मौका तब आया जब ये पैगाम 20 साल तक पेश किया जाता रहा और बात वहां तक पहुंच गई कि जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब बाज लोग जिद में आ गए हैं और वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का ये फरमान हमें अब नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि अब नबूवत खत्म हो गई है, अब कोई वही मजीद नहीं आएगी, और मजीद ये कि ना हम में से कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके कि हमने अल्लाह का पैगाम लोगों को इतनी अच्छी तरह पहुंचा दिया है कि अब जो लोग नहीं मान रहे असल में वो जिद्दी हट धर्म है। इसलिए कुरान मजीद की इन आयात से ये नतीजा निकालना कि हमें अल्लाह ताला ने कुफार के साथ शिद्दत करने का हुक्म दिया है, वल ठीक है ये बात, कुफार के साथ शिद्दत करने इख्तियार करने का हुक्म दिया है, लेकिन इसमें एक और बात ऐड कर लें कि हम जान ही नहीं सकते कि कौन काफिर, इसलिए हम इस बात पर आप कहिए मजबूर हैं कि हम सब इंसानों को जो मुसलमान नहीं है उनके बारे में ये समझें कि वो गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम जरूरी नहीं है कि काफिर हो। तो इसलिए कुरान मजीद को पढ़ने का अंदाज ठीक करना चाहिए। जी
सर, काफिर का थोड़ा सा अगर आप मुख्तसर बता दें कि काफिर और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है।
देखें, गैर मुस्लिम तो वो है कि जो मुसलमान नहीं, और काफिर वो है कि जो अल्लाह के पैगाम को जानने के बावजूद कि अल्लाह का पैगाम है उसको हकीकत में नहीं मान रहा। शायद बात मेरी समझाने में इस तरह से कुछ आसानी हो जाए मुझे कि मैं आपको ये बताऊं कि मुसलमान मुसलमान होता है, गैर मुस्लिम वो होता है जो मुसलमान नहीं है दुनियावी लिहाज से, कानूनी लिहाज से। काफिर वो होता है कि जो दीन को जान लेने के बावजूद उसको हकीकत में नहीं मान रहा होता, और काफिर गैर मुस्लिम भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। यानी मुनाफिक सारे काफिर थे और मुनाफिक सारे मुसलमान थे। तो इसलिए काफिर का लेबल हम अब किसी पर नहीं लगा सकते, चस्पा कर सकते, क्योंकि हमारे पास अब कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जो लोगों के दिलों में झांक कर हमको ये बताए कि इसे बात समझ में आ गई है लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस वजह से हम सारे इंसानों को या समझेंगे वो मुसलमान हैं या समझेंगे गैर मुस्लिम हैं, और दोनों के साथ नरमी से पेश आएंगे, और दोनों को हम हिकमत के साथ हम अल्लाह के दीन की बात पहुंचाएंगे दूसरों के बारे में बदगुमानी किए बगैर।
शुक्रिया सर। हमारा अगला सवाल है कि शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का बाहिमी ताल्लुक क्या है और इसका इदराक किस तरह से किया जा सकता है।
जी, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का ये ताल्लुक है कि तमाम दहशत गर्द शिद्दत पसंद होते हैं, लेकिन तमाम शिद्दत पसंदों को दहशत गर्द होना जरूरी नहीं। कहने का मकसद यह है कि इंसान पहले शिद्दत पसंद होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है। एक्सट्रीमिस्ट में से बाज लोग ये फैसला करते हैं कि हमें अपनी एक्सट्रीमिज्म की अंडरस्टैंडिंग नैरेटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए दहशत गर्दी करनी है। सो दहशत गर्द जो हैं वो शिद्दत पसंदों का एक सबसेट है। दुनिया में अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी तादाद में, मैं जाहिर है मुझे अपने मुसलमानों ही से दिलचस्पी है, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, शिद्दत पसंद हैं, लेकिन उन शिद्दत पसंदों में निस्बतन कम तादाद है जो दहशत गर्द है। अब शिद्दत पसंद दहशत गर्द कब बनता है, वो उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके हालात होते हैं, अवामिल होते हैं। बाज लोगों में हिम्मत ही नहीं होती, एक आदमी अपने अपने नजरिए में शदीद है, उसे मालूम है ये सारे काफिर हैं, उनको उड़ा दो, खत्म कर दो, यही मेरे दीन का तकाजा है, मगर इतना इतनी हिम्मत नहीं है। जो शिद्दत पसंद दहशत गर्द बन जाते हैं तो उनको कोई ऐसे लीडर्स मिल जाते हैं जो ऐसी जबरदस्त तकरीरें करते हैं और फिर उनके लिए बाकायदा रास्ता बनाते हैं, उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो दहशत गर्दी भी करते हैं। तो शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी में बड़ा गहरा ताल्लुक है। वन लीड्स टू द अदर, यानी आप ये नहीं हो सकता कि एक आदमी एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है लेकिन वो टेररिस्ट बन जाए। नहीं, टेररिज्म के लिए जरूरी है कि इंसान का जहन शिद्दत पसंद हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। सो इस वजह से मैं ये कहता हूं हमेशा कि चाहे कोई शख्स बिल्कुल नातवा हो, अपने घर में अकेला रहता हो, लेकिन इसके बाद बावजूद वो शिद्दत पसंद है, निहायत खतरनाक चीज। आपको अगर दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आपको शिद्दत पसंदी भी खत्म करनी होगी। यानी ये बात कि आप इंसानों से नफरत करते हैं उनके मजहब की वजह से, उनके मजहबी नजरियात की वजह से, ये बहुत खौफनाक चीज है। मैं समझता हूं कि यू नो जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ अरसे पहले तक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, हमारे स्कूल के बच्चों को उन्होंने मारा और न जाने क्या क्या कुछ हुआ, और कहते ही हैं कि अब तुम्हारे दोबारा इसके अल्लाह माफ करे इम्कानात कुछ नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ अपनी जगह पे जाहिर है, निहायत ही अफसोसनाक कंडेमनेबल चीज है, लेकिन मैं गुजारिश करूं उतनी ही कंडेमनेबल चीज ये है कि एक मुसलमान हो किसी को थप्पड़ भी ना मारता हो, अपनी नमाज रोजे पे उसका यू नो ध्यान है, लेकिन लोगों से नफरत करता है, उसके एटीट्यूड में लोगों के बारे में हकारत है, ये भी उतनी ही कंडेमनेबल चीज है। सो आपको अगर अपने माशरे में दहशत गर्दी को खत्म करना है तो फिर उस जहन को ठीक करना होगा कि जो असल में दहशत गर्दों को नई सप्लाई सप्लाई लाइन होती है उनकी, फराहम करते हैं अफराद, और वो जब तक के शिद्दत पसंद लोग रहेंगे दुनिया में दहशत गर्दी को सप्लाई जारी रहेगी।
सर अगला सवाल है कि वो मुस्लिम जो शिद्दत पसंद है, क्या इसकी एक वजह ये है कि वो रसूल पाक के दौर जैसा दौर आज चाहते हैं कि वो जो वो जमाना था वही जमाना आज आ जाए वैसे, या क्या वो दौरे हासिल के तकाजों का शऊर नहीं रखते?
देखें जी, पहले तो मैं शिद्दत पसंदी का रवैया अख्तियार करते हुए सवाल के दूसरे हिस्से की को उड़ाना चाहता हूं। जो मैं कहता हूं गैर शिद्दत पसंद मुसलमान भी सवाल का दूसरा हिस्सा पढ़ेगा तो वो पूछेगा कि भाई साहब आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, आप हैं कौन, आप कह रहे हैं कि हम अपने इस्लाम को दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक ढाल दें, यानी इस्लाम नहीं होगा बल्कि दौरे जदीद होगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में, मुसलमान भी हैं। मैं समझता हूं कि मुझे उनसे कोई गिला नहीं, सिवाय इसके कि मैं समझता हूं कि उनको अभी दीन की अंडरस्टैंडिंग सही तरह से नहीं पहुंची। अगर किसी शख्स को अल्लाह का दीन समझ में आ जाए तो वो इस बारे में परेशान नहीं होगा कि हमें अपने दीन में कुछ रद्दो बदल करने की जरूरत है ताकि वो नए दौर के तकाजों के मुताबिक नजर आना शुरू हो जाए। नहीं, हम अपने दीन को जैसा है वैसा ही समझें, और ये अलग से एक गुमराही है इंसान ये कहे कि भाई वो वाला दीन के जो कुरान और सुन्नत में है वो तो अब नहीं चल सकता, तो आइए इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां करें कि जिससे ये दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक प्रेजेंट किया जा सके। मैं कहता हूँ यार इससे बेहतरी है कि उस दीन को छोड़ ही दो, क्यों फामखा तुमने अपने आप को उसके साथ वाबस्ता किया हुआ है जब आप महसूस कर रहे हैं कि ये दीन आज नहीं चल सकता, तो उस दीन को आप माफ करें और आप अपना काम करें। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये तो मैंने एक एक्सट्रीम बात की है इसलिए कि मैं भी तो एक एक्सट्रीमिस्ट हूं, शिद्दत पसंद हूं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं हमारा दीन दौरे जदीद के तकाजों से कोई लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल दौरे जदीद को भी गाइड कर रहा है। अब ये तो ना कहे ना कि दौरे जदीद का तकाजा ये है कि गेज और लेस्बियंस हैं आप उनको भी इजाजत आप दे दें, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा दीन अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह का पैगाम है, वो हर जमाने के लिए आया, सिर्फ हुआ ये है कि उसको चूंकि समझने में गलती हुई है इस वजह से बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं अब दीन में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है कि जिसके बाद हम शायद इस दीन को ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकेंगे। तो ये मैंने दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देते देते मैं इतना जोश में आ गया कि पहला हिस्सा मैं भूल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप मुझे बताइए पहला हिस्सा क्या?
कि जो शिद्दत पसंद मुस्लिम है उसकी एक वजह ये है कि वो रसूल पाक का दौर चाहते हैं इस जमाने में भी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बता सकता हूँ। आज लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे लेकिन ये अच्छा है, डिसएग्रीमेंट तो बड़ा जरूरी है। और वैसे एक और बात बताऊं मैं आपको, आम तौर पर शिद्दत पसंद जो हैं वो डिसएग्रीमेंट बर्दाश्त नहीं करते। वैसे मैंने देखा है कि बाज मॉडर्न शिद्दत पसंद ऐसे हैं कि जिनको वेस्ट में रहकर वेस्टर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है। मैं ये देखता हूं कि अभी मैं फिर सवाल भूल जाऊंगा तो आप मुझे फिर दोबारा याद कराएंगे, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं जो मेरे जहन में आई हुई है। वेस्ट में प्रेजेंटेशन का एक तरीका ये है हाँ बड़ा अच्छा तरीका है, जो मेरे ऐसे लोग नहीं जानते, हम तो बोरिंग गुफ्तगू करते हैं, मौलवी साहब आ जाते हैं मेरी तरह के बातें करते हैं, लोगों को पहले 10 मिनट में नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वेस्ट में जो मुसलमान काम कर रहे हैं वो बड़े प्रेजेंट होते हैं, बड़ा मुस्कुरा के गुफ्तगू करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, और बजायर वो डिसएग्रीमेंट्स को अकोमोडेट करते हैं, लेकिन अंदर से होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है। ये जो हमारे दौर में बाज मूवमेंट्स चली, जिसमें उन्होंने और बड़े आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स और आप कहिए इंटेलेक्चुअल्स, ऑरेटर्स, प्रेजेंट करने वाले लोगों ने बड़े मौसर अंदाज में और बजाहिर कुरान और हदीस को कोट करके समझा के लोगों के दिलों में ये बात उतार दी है कि हमारे दीन का असल नस्बुलैन और मकसद ये है कि दीन का झंडा पूरी दुनिया पर गाड़ दिया जाए, दुनिया के कोने कोने में मुसलमानों की हुक्मरानी हो। हम गैर मुस्लिमों को जबरदस्ती मुसलमान तो नहीं करेंगे, लेकिन हम तमाम गैर मुस्लिम रियासतों, हुकूमतों से उनका इख्तदार छीन लेंगे अगर हमारे बस में हुआ तो। ये आप में से बहुत से लोग जानते हैं, आई एम श्योर के बाज लोग उन तंजीमों में शामिल रहे होंगे, ये भी मुमकिन है कि बाज लोग अभी भी शामिल हैं, मैं भी एक जमाने में शामिल रहा था। तो ये जो नजरिया है, जिसमें मैं आपको बताता हूं, जब मैं उस नजरिए के साथ था तो हम ख्वाब देखते थे किसी तरह से इकामत दीन हो जाए, दीन कायम हो जाए पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में। तो ये बात सवाल में बड़ी सही पूछी गई है कि क्या ये भी एक वजह है? बिल्कुल है, उसकी वजह ये है कि आप सोचिए कि एक तरीका वो है कि जो हम जैसों का है, कि हम भी ये सोचते हैं पूरी की पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। आप यकीन जाने मैं ये सोचता हूं, लेकिन कैसे? समझा के, लोगों से मिलके, अच्छा अखलाक पेश करके, कुरान की तालीमात पेश करके, अच्छा मुआशरा कायम करके। बस हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई मिलिट्री एक्सपेडिशन एडवेंचर इसका इस मकसद के लिए नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस नजरिए के कायल हैं कि हमें दीन को पूरी दुनिया पर, पूरे ग्लोब पर गालिब करना है, डोमिनेट करना है, तो जाहिर है कि उनके यहाँ तो फिर इस मकसद के हुसूल के लिए शिद्दत पसंदी होगी। और आई एम श्योर कि इसने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया। मैं एक आखिरी बात इसमें कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जो दहशतगर्द लोग पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में जो TTP है, वो ऐसे लोगों पर भी मुश्तमिल है जो इस तरह की तंजीमों से मायूस होकर वहां चले गए हैं। यानी उन्होंने इन बुजुर्गों से ये सीखा कि दीन का मकसद दीन को गालिब करना है पूरी सोसाइटी पर, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो कुछ कर नहीं रहे सिवाय तकरीरों के या इलेक्शन में हिस्सा लेने के, जिसका के कोई नतीजा नहीं निकलना। तो हम अब ये देख रहे हैं कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने को है कि जिसके लिए बहुत से लोग अपने, जिसको मैंने तकरीरों में सुना, तन मन धन की बाजी लगाकर वो तो खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। तो इन तंजीमों ने और इन नजरियात ने शिद्दत पसंदी, लीडिंग टू दहशतगर्दी में बड़ा रोल अदा किया।
फिर जो अगला सवाल है उसमें सूरत माईदा की आयत नंबर 38 है, वो कोट की गई है कि चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काट दो, क्या ये शिद्दत पसंदी नहीं है?
देखें, गुजारिश ये है कि आप क्या चाहते हैं कि हम चोर को इनवाइट करें और कहें कि आप एक तकरीर करें कि चोरी कैसी करनी चाहिए? भाई, चोरी एक बहुत बड़ा हादसा है। एक शख्स ने मेहनत से कुछ कमाया है और एक शख्स जानते बूझते हुए उसका माल लेकर गायब हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि माशरे में ऐसा हो, होता रहे? ये वो सवाल है कि जिसको जिसका जवाब सब लोग ये देंगे, यानी हम में से कोई भी नहीं चाहता कि चोरी माशरे में हो। तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर चोरों का क्या किया जाए? इसके जवाब में کوئی بھی حتمی بات انسان نہیں کہہ سکتا. شریعت ایسے ہی سوالات کے جوابات دیتی ہے, اور ہم جب اللہ کو, اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نے ایسے معاملات میں جو جواب دیا ہے وہی صحیح جواب ہے. یہ بات کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دینا ایکسٹریمزم ہے, پلٹ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ چور کو کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ ایکسٹریمزم ہے. تو یہ تو پھر اب یو نو ایکسٹریمزم تو یہ ہوا کہ آپ بغیر وجہ کے کسی کو سائڈ لائن کر رہے ہیں یا نفرت کا, حقارت کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ جان لیجئے کہ اسلام کی تعلیمات میں کسی چور کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے بہت سی شرائط ہیں کہ جن کا پورا ہونا ضروری ہے, اور ان میں یہ شرط ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ چور چوری کرنے پر مجبور ہو اپنی حالات کی وجہ سے, یا اس نے کوئی ایسی چیز چوری کی ہو کہ جو اپنی قیمت میں بہت کم ہے, یا ایک کنفیوژن تھا کہ کسی نے اپنی بکریاں ایسی آزاد چھوڑ دی اور کسی نے پکڑ کے ان میں سے کسی کو ذبح کر لیا وغیرہ وغیرہ. سو چور جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ وہ چور ہے اور اس کی چوری کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے حالات میں, تب یہ سزا ہوگی. کسی معاشرے میں سزا کے نفاذ سے پہلے معاشی حالات ایسے ہونے ضروری ہیں کہ غریب چوری کرنے پر مجبور نہ ہو. لیکن حالات بالکل ٹھیک ہیں اور ایک آدمی چوری کرے اور آپ کہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایکسٹریمزم ہے, تو بھائی مجھے اجازت دیجئے کہ میں کہوں کہ آپ کی رائے ایکسٹریمزم ہے کہ آپ چور کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ڈیبیٹیبل ہوتی ہیں, جن میں گفتگو کا امکان ہوتا ہے, اس میں بس گفتگو کرنی چاہیے. اور ہم اس کے جواب میں, میں سر کم سے کم صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا اور دلائل کے ساتھ مانا, اور اس میں ان سوالات کے جوابات کے جو میں خود سے نہیں سوچ سکتا میرے رب نے مجھے بتائے, اور میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا.
سر اگلا سوال یہ ہے کہ انتہا پسندی کس طرح مذہب کی تہذیب و ثقافت کو متاثر کرتی ہے؟
بری طرح متاثر کرتی ہے. کسی بھی معاشرے میں جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس میں جو طور طریقے اختیار کرتے ہیں, اسی سے تہذیب, ثقافت, رویے وجود میں آتے ہیں. ہمارے ہاں میں بچپن جانتا ہوں, میرا گزرا ہے اسی ملک میں, اور وہ لوگ کے جو اس سے پہلے انڈیوائڈیڈ انڈیا میں رہتے تھے, مجھ سے پہلی جنریشن, وہ بتاتے ہیں کہ ایکسیپشنز ہمیشہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی, لیکن ہماری معاشرت, ہماری تہذیب ایسی تھی کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے, برداشت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کے طور طریقوں کا احترام کرتے تھے. اختلاف کے باوجود ایکا تھا, آپس میں بھائی چارہ تھا. لیکن جب سے یہ شدت پسندی آئی ہے, لوگ آپس میں کٹ گئے ایک دوسرے سے. میں اب آپ کو اس کی ایک مثال لیتا ہوں. میں کو پچھلے 25-30 سال سے پبلک میں لوگوں کے دینی سوالات کے جوابات دے رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں, وہ تعداد شاید ہزاروں تک پہنچ گئی ہوگی, اب مجھے سوالات موصول ہوئے جن میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا شیعہ لڑکے کی شیعہ لڑکی سے, یا سوری شیعہ لڑکے کی سنی لڑکی سے, یا سنی لڑکی کی شیعہ لڑکے سے شادی ہو سکتی. یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ معاشرے میں ایک بڑی سوچ کی تبدیلی آ گئی ہے. تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں, جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کے علاوہ یہ بتاتا ہوں کہ جی میری جنریشن اور مجھ سے بڑوں کی جنریشن میں میں نے بیسیوں ایسے دیکھے ہیں جوڑے جس میں اگر شوہر سنی ہے تو بیوی شیعہ ہے, یا شوہر شیعہ ہے تو بیوی سنی. شدت پسندی کے نتیجے میں آپ ایک دوسرے کو جب کافر قرار دیں گے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں آپ ایسا تردد محسوس کریں گے کہ جس کے بعد آپ آپس میں ڈسٹنس کریٹ کریں گے, تو تہذیب معاشرت بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے عام طور طریقے ہیں, ہمارے تصاویر ہوتی ہیں, کچھ ہمارے یہاں موسیقی ہوتی ہے, وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. شدت پسندی کا جب سیلاب آئے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا, اور صرف ایک خاص قسم کی مصنوعی مذہبیت ہے جو غالب آ جائے گی, جس میں ایک خاص شکل و صورت کے لوگ ہوں گے, خاص لباس ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اور وہ تہذیب, وہ معاشرت کیا ہوگی, وہ لوگوں کے اپنے تصورات ہوں گے جو انہوں نے ایک شدت پسندانہ ذہنیت کے ساتھ دین کو سمجھا ہے اور وہ اس کو پورے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو معاشرت تو اس سے بہت بری طرح متاثر.
سر یہ اگلا سوال ہے, شدت پسندی صرف مذہبی گروہ کرتے ہیں یا اقتدار پسند پرست جو لوگ ہیں وہ بھی اس کھیل میں شامل ہیں؟
نہیں نہیں کیوں نہیں شامل ہے جناب, اقتدار بھی ایک بڑا اہم دنیا میں محرک رہا ہے, ابھی بھی ہے. ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے اور اقتدار میں قائم رہنے کے لیے لوگ کسی اصول کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ایک انسان کے لیے تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے. تو اصل میں میں نے اسی لیے گزارش کی ایک سوال کے جواب میں کہ ایک شدت پسندانہ ذہنیت ہوتی ہے, شخصیت, کہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ عام معقول نارمل طریقے سے کامن سینس کی بنیاد پر معاملات ہوں, تو وہ پھر شدید ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز اقتدار کے لیے بھی ہوتی ہے, یہ چیز نظریات کے لیے بھی ہوتی ہے جو مذہبی نظریات کے علاوہ, جیسے کامنزم, یعنی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کا اگر کوئی حل ہے یعنی اس موجودہ صورتحال سے نکلنے کا, تو وہ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو مار دیا جائے, یعنی بے تکلف کہتے. تو یہ بعض لوگ جو ریفارمسٹ ہوتے ہیں وہ بھی شدت پسند ہوتے ہیں. تو شدت پسندی جو ہے ایک کامن بیماری ہے, جو جیسے آپ کو نظر آئے گی حکمرانوں کے ہاں, نظریاتی لوگوں کے ہاں, کہ جو نظریاتی ہیں مذہبی نہ ہونے کے باوجود, اور یہی مذہب میں بھی آپ کو نظر آئے.
سر اس میں ایک سوال ہے, انہوں نے کہا کہ یہ لبرل شدت پسندی کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ لبرل جو ہیں وہ جو مذہبی لوگ ہیں, ان دونوں کے آپس میں جب اختلاف ہوتے ہیں, یہ کبھی عزت و احترام سے آپس میں ان کے اختلاف ہم نے کبھی نہیں سنے.
دیکھیں میں جتنا آپ کو شکل و صورت اور گفتگو سے نظر آ رہا ہوں تو تھوڑا مولوی ٹائپ ہی ہوں نا میں. میں لبرل اس طرح سے تو نہیں ہوں, مگر میں آپ سے حقیقت میں گزارش کروں, اور آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, کہ یہ لبرلز اور یہ ایتھیسٹس یہ مذہبی لوگوں کی پیداوار ہے. یعنی اس دنیا میں بڑے بڑے سوالات ہیں, میں کون ہوں, مجھے کس نے بنایا ہے, جس نے بنایا ہے اس نے مجھے کیوں بنایا ہے, موت کے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ صحیح اور غلط کی تمیز ہم کو کیوں دی گئی ہے, دنیا میں ناانصافی کیوں ہے, دنیا میں بیماری کیوں آتی ہے, تکلیفیں کیوں آتی ہیں, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس ذات کے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. اس ذات نے اس کا جواب, ان سوالوں کا جواب دیا ہے اپنے پیغام میں. وہ پیغام تھا اور ابھی بھی ہے, لیکن میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیغام تھا کہ جس کو اگر صحیح طرح سے پیش کیا جاتا تو یہ لبرلز اور یہ ایتھیس آپ کو نظر ہی نہ آتے, مطلب ہوتے ادھر ادھر ہوتے بےچارے. لیکن ان کو جو ملی ہے سپورٹ, ترقی, پاپولیرٹی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اتنا پور طریقے سے سمجھا گیا اور اتنا پور طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں جناب آپ دیکھیں جو آپ کے پاکستانی جو ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف چینلز ہیں, یوٹیوب کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اپنی گفتگو ہیں اور نہ جانے کیا کیا, اس میں کیا کرتے ہیں, مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں. ان تعلیمات کا کہ جو یا تو صحیح طرح سے سمجھائی نہیں گئی, نہ سمجھی گئی نہ سمجھائی گئی, یا اکثر وہ جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں, یعنی اللہ معاف کرے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی نکاح کے وقت, 9 سال تھی رخصتی کے وقت, یہ بات بیان کی اور اس کے بعد دین کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو یہ جو سوال تھا کہ وہ بھی تو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے اگر یہ دین اپنے اساتذہ کی وجہ سے صحیح طرح سے نہ سمجھ میں آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایکسٹریمسٹ ایک لبرل ہوتا. اس لیے کہ یہ جو مولویوں والا دین ہے یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں آپ پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لبرل ایکسٹریمسٹ اور ایتھیسٹ یہ بالکل ختم ہو جاتے اگر دین طرح ٹھیک طرح سے پیش کیا ہے, نہیں, ان کا کوئی خاص حیثیت نہ ہوتی, بے وزن ہوتے. اس وقت ان کا بڑا وزن ہے اس لیے کہ کہیں وہ کرسچینٹی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہیں وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہیں کسی ہندوازم کا اڑا رہے ہیں, اور ان کے پاس چیزیں ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ایسے لوگ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو بات ہوتی ہے اس بات کو وہ یوں اڑا دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے.
سر یہ ہمارا آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم شرکاء کی طرف سے سوالات لے لیں گے. اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ واضح طور پر شدت پسندی کی وجہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت شدت پسندی کو سیریس نہیں لیتی؟ ان حالات میں حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کم وقت میں ان حالات پر قابو پا سکیں؟
دیکھیں, ایک تو میں یہ گزارش کروں کہ بڑا حادثہ ہو گیا پارٹیشن کے فوراً بعد, اور وہ حادثہ یہ تھا کہ ہمارے رہنماؤں نے اور پالیسی میکرز نے یہ محسوس کیا کہ ہم کو صحت کے لیے ڈاکٹرز چاہیے, چنانچہ میڈیکل کالجز بننے چاہیے, سڑکوں کے لیے, ڈیمز کے لیے, بریجز بنانے کے لیے انجینئرز چاہیے, چنانچہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہونی چاہیے. مذہب کے بارے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی, ورنہ وہ اسی طرح سے مذہبی ادارے بناتے حکومت کے زیر انتظام, اور جو اللہ کے دین کا حکم اور تقاضا ہے کہ وہ مسجدوں کے انتظام کو سنبھالتے, اور وہ خود حکمران جمعے کی نماز پڑھاتے یا اپنے نمائندوں سے پڑھواتے, تو یہ فرقے واریت اور یہ شدت پسندی ہوتی ہی نہ. ملیشیا میں اگر کوئی شدت پسندی ہے تو وہ حکمرانوں کی طرف سے, سعودی عربیہ میں, یہاں یو اے ای میں, جہاں جہاں مسجدوں کو اور مدرسوں کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا وہاں چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہیں, لیکن وہ طرفہ تماشا نہیں ہے جو ہمارے ملک میں. تو پہلا تو مسئلہ یہ ہو گیا, اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں, ہمارے ہاں 70 سال میں آدھی تاریخ رہی ہے جمہوریت کی اور آدھی تاریخ رہی ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی. جمہوریت تو پنپ نہیں دی گئی, وہ تو آتی ہے اور جاتی ہے, اور جمہوریت اسی وقت کچھ اپنے رنگ بہتر دکھا سکتی ہے جب اس کو قانون کے اصول کے مطابق چلنے دیا جائے. میں ابھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا, میں صرف بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت پر کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں وہ بیچاری کمزور ہوتی, انہیں تو اصل میں پارلیمنٹ میں ووٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو कभी हमारे मुल्क में सिवाय शायद एक मरतबा केपीके में एमएमए की हुकूमत बनी थी, वरना या बलूचिस्तान में कभी कभार बन जाती है। मौलवी हजरात की हुकूमत सेंटर में कभी पाकिस्तान में ना बनी या ना बन सकती है। तो एक तो ये मामला है कि अगर तो है कोई जमहूरी हुकूमत तो वो तो मजहबी लोगों की मुखालिफत मोल ही नहीं ले सकती, अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इसलिए कि वो लोग अगर विड्रॉ कर लें तो फिर अक्सर ये होता है कि उनकी हुकूमत ही बैठ जाए, या उनकी स्ट्रीट पावर इतनी है कि अगर वो मैदान में आ जाएं तो छक्के छूट जाएं। मैंने ये सारी तमीज इसलिए बांधी कि ये जो आधा हिस्सा डिक्टेटरशिप के जेरे असर रहा है उसमें मुशर्रफ एक लिबरल डिक्टेटर, इसका कोई मजहब से कोई खास सीरियस ताल्लुक नहीं, और वो मुशर्रफ का ये एक एजेंडा था किसी तरह से वो मजहबी रिफॉर्म्स हों के जो फिर बात को जरा आगे ले जाएं और एक्सट्रीमिज्म का मुंह नहीं हो सका। मुशर्रफ के दौर में हुकूमत की तरफ से सर्वे करने के लिए जब टीम्स बाज मदरसों में जाती थी उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता था। सो यू नो ये आलम है मजहबी शिद्दत पसंदी का कि वो इसको जो उनका है अपना मदरसा उसके पूरे उस प्रेमिसेस को अपनी सल्तनत समझते हैं और उस सल्तनत में वो किसी को दाखिल नहीं होने देते, तो हमारे यहाँ अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता।
जी अब हम ले लेते हैं सवाल ऑडियंस की तरफ से। ये पहला सवाल है हमारे पास रफिया ख्वाजा साहिबा है, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए।
सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि काफी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो जैसे आइसिस हैं वो भी कुरान की आयतें कोट करते हैं जो टाइम स्पेसिफिक है। सो व्हेन दे आर किलिंग दे से कि जी कुरान में ये लिखा हुआ ऐसे करना है। उसामा बिन लादन ने भी जो हरकतें की थी वो भी कुरान की आयतों को कोट करके की गई थी कि मैं तो कुरान को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप इस सिलसिले में जो चीज है उसको कैसे हैंडल करेंगे?
ये आपने बड़ा अच्छा किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मैं इस बात को पूरी तरह से मैंने एड्रेस नहीं किया था। मैंने सिर्फ हल्का सा एक इशारा किया था कि कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका यह है कि आप कुरान मजीद को एक कंसिस्टेंट पैगाम देने वाली किताब के तौर पर पढ़ें जिसमें कोई कंट्रडिक्शंस नहीं। सो जब आप उसको ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आप काफिर की भी सही डेफिनेशन करेंगे और आप इस चीज को भी जानने के लिए फिक्रमंद होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक जगह तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने अगर किसी एक इंसान को भी कत्ल किया तो तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और दूसरी जानब कह रहे हैं कि तुम कत्ल करो इनको जहां कहीं भी पाओ। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बात मुझे शुरू ही में एम्फसाइज करनी चाहिए थी कि कुरान मजीद को अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगुज़िश्ते इंजार की हैसियत से नहीं पेश किया गया तो फिर वही होगा कि जो आइसिस, दाइश और तालिबान वगैरह अलकायदा ये पेश करते हैं कि आयात को लिया और उनको बयान करना शुरू कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके सामने भी कोई मौलवी साहब तकरीर करें और सूरह तौबा की आयत नंबर 111 पेश करें, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने अहले ईमान के माल और उनकी जानें खरीद ली हैं जन्नत के बदले, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं, ये अल्लाह का वादा है सच्चा, तौरात में भी, इंजील में भी और कुरान में भी। अल्लाह से ज्यादा अपने वादे का पूरा करने वाला कौन हो सकता है? तो ऐ मुसलमानों, इस खुशखबरी को हासिल करो कि जो तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिली है। तो जाहिर है कि लोग इस तरह की आयात पेश करते हैं और उसके बाद लोग जोश में आते हैं, कहते हैं कि हमें जन्नत का चाहिए और जन्नत के हुसूल के लिए हमें अल्लाह के रास्ते में लड़ना है, और जिहाद वो नहीं कि जो नफ्स के साथ है, युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून, वो कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी। तो ये उस वक्त तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती, جب تک کہ آپ قرآن مجید کو ایسے پیش نہ کریں کہ جس میں اس کا پورا پیغام کنسسٹنٹ نظر آئے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ بتائیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے, اس میں بعض آیات واضح طور پر اسی زمانے کے لیے ہیں اور بہت سی آیات ہیں کہ جو ہر زمانے کے لیے ہیں. اور اسی میں میں ایک اور کسی نے سوال کیا تھا یا کوئی کرنے والا ہے, میں اس کا بھی جواب دے دوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس بات کو پروپوز کیا گیا ہے اور پہلے بھی کیا گیا تھا کہ سارے اسٹوڈنٹس کو ایک خاص عمر تک قرآن مجید پڑھا دیا جائے پورے کا پورا ترجمہ کے ساتھ. سچی بات ہے جب میں نے یہ پروپوزل سنا میں ڈر گیا, اس لیے کہ بھائی صرف قرآن پڑھانا کافی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھائے گا کون؟ جو قرآن پڑھائے گا اس کی ذہنیت اس کے ترجمے اور اس کے بیان میں سامنے آئے گی. یہ آیت بھی پڑھائیں گے اور آیات بھی پڑھائیں گے, تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. تو ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن مجید کے بیانات ہیں ان کو جب ہم پیش کریں گے تو ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو کیا سمجھ رہے ہیں, قرآن کے ہم سے آج تعلق کے بارے میں ہماری وہ کیا بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اس سے زمین اور آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے.
سر میرا کوشچن بھی اسی حوالے سے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم جو ہماری ٹریڈیشنل فارمز ہیں جس میں ہمارے جو سیدوبال موجودی کا رکھوا ہے, ڈاکٹر اسرار احمد ہے اور اس کے علاوہ بھی جو باقی اسکالرس ہیں, تو جب ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ کچھ آیتیں ایسی قرآن میں جن کو پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مطلب لوگوں سے جہاد, مطلب مشرکوں سے جہاد کرو, ان سے ان کو قتل کرو, اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جو جس میں کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا, اور ایسی بھی آیت پیش کی جاتی ہے کہ وما لكم لا يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا هاجر قرية الظالم أهلها. اس کے علاوہ بھی کچھ حدیث کوٹ کے جاتے ہیں کہ ان اللہ لا يزو بالسلطان وما لا يزو بالقرآن الاسلام یولا والایولا. اس طرح کی ہم آیتیں ہم پڑھتے تو ان میں شدید ہمیں لگتا ہے کہ لا تکون, جس میں وہ کہتے ہیں کہ لا تکون ہماری سماج پر اور ہمارے مسلمان کے ہے, اس طرح سے بہت ہمارے ساتھ امپیکٹ بڑھ. سر ہمیں ایک مطلب میں ایک آدمی ہے, میں ایک لرنر ہوں, اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہوں کس کی ٹرانسلیشن اور کس کا تفسیر, مطلب جو جس نے ٹرانسلیشن لکھی ہے جس نے اس پارچے سے بیان کیا, کہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ کون ان میں سے مطلب مطابقت رکھتا ہے جس میں ہم آنگی پائی جاتی ہے اور کس کی ٹرانسلیشن ایگزیکٹ.
نہیں یہ میں نہیں کروں گا کام, میں کسی کا نام آپ کو بتاؤں, میں تو وہی گزارش آپ سے کروں گا جو میں نے پہلے کی کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اللہ کی کتاب خود یہ کہتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے, ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت اختلاف پاتے. ایک جانب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے, اور دوسری جانب یہ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں کہ تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ. اگر یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے تو بھائی کنٹرڈکشن اور کیا ہوتی ہے. تو ایک مسلمان میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں اپنی طور پر جہاد کر رہی ہیں اور دین قتل کر رہے ہیں, ان کو پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں, اس لیے کہ جب یہ والا وہ جہاد کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات میں تضاد ثابت کر رہے ہیں, وہ اس بات کو اپنے عمل سے اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی کتاب میں کنٹرڈکشن ہے, اس لیے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اسی ایک جان کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے, اور یہاں قتل کرنے کو ایک عظیم ایک نیکی سمجھا جا رہا ہے, جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. میں یہی گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ قرآن کو غور کریں. ایک آیت آئے تو آپ کہیں کہ ارے یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے مگر وہاں تو کچھ اور لکھا تھا. تو آئیں آپ سمجھیں, جب آپ اس طرح سے تدبر کریں گے غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر یہی بات لے لیجیے کہ یہ ایک جانب جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے دو کے, ایک جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا نمبر ون, اور دوسرا جس نے زمین میں فساد مچایا یعنی لوگوں کی جان لوگوں کا مال لوگوں کی آبرو خطرے میں ڈالی. اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا, انسان کو مسلمان کو نہیں انسان کو, تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہاں ظاہر حال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قتل کرو جہاں کہیں پاؤ, اور یہ قتل کرتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں. اس کا اگر آپ کو جواب نہ ملے نا تو خاموشی سے بیٹھ جائیے اور اللہ سے دعا کیجیے خدا اپنی کتاب سمجھا دے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تیری کتاب ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ جہاد نہیں کریں گے, آپ بات سمجھ لیں, آپ جہاد نہیں کریں گے, آپ کسی کونے میں بیٹھ کے سجدہ کریں گے, وہ خدا سے کہیں گے خدایا تیری کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ مولویوں کی تقریریں سنتے ہیں اور جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حالانکہ جہاد تو بعد میں آئے گا, پہلے اپنے ایمان کو تو ٹھیک کریں. بھائی میری کتاب کہہ رہی ہے کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے, اور یہ اتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے. تو جناب والا کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ خود اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ جو جہاد تھا یہ اصل میں اللہ کا عذاب تھا. اللہ جیسے پچھلے رسولوں کی قوموں کے انکار پر کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے وہ قوموں کو نیست و نابود کرتا تھا, سزا سے دوچار کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم نے جب آپ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کو اس عذاب کا ذریعہ بنایا. یہ میں کوئی فلسفہ بیان نہیں کر رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں فلم تقتلوہم, تم نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قتل کر بھی کیسے سکتے ہو بھائی, تمہیں اجازت کس نے دیا قتل کرنے کی, ولکن اللہ قتلہ, بلکہ اللہ نے قتل کیا ان کو. اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ والا جہاد قیامت تک کے لیے نہیں ہے, یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے, یہ اللہ کے عذاب کی یہ شکل تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے امپلیمنٹ کیا. یہ بات واضح کرنے والی ہے, اور انفارچونیٹلی چونکہ یہ بات واضح نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے دین کے بارے میں لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کا پروپیگنڈا بڑا مؤثر ہے, اس پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے والے خود ہمارے مسلمان ہیں, صرف عام لوگ نہیں ہیں, مجاہدین ہی نہیں ہیں, علماء بھی ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے, یہ ہمارا دین کا حکم ہے. تو اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کے سروائیول کا مسئلہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو اس نیریٹو کو کہ یہ قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے اس کو عام کریں.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ جو ایک میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ مذہبی ایکسٹریمزم ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا, اور یہ بیان کیا کہ ایک بہت ہی بڑی وجہ جو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے میسج کو صحیح طرح سے نہ سمجھنا, اس کے ہولسٹک میسج کو نہ لینا, پارٹ لے لینا, یہی وجہ بنتی ہے. لیکن میرا سوال تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ جو غیر مذہبی ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, جس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی تلاش میں کبھی نکلے ہی نہیں, صوبائی عصبیت پسندی بھی بہت ہے, سندھی پنجابی کو برداشت نہیں کرتا, اور اس طرح سے ہمارا ایک کنٹری دنیا میں شاید واحد کنٹری ہے جو ایک فینسڈ کنٹری ہے, ہم نے ہر طرف باڑ لگا دی ہوئی ہے, تو یہ جو پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے آئے گی, یہ بھی تو ایکسٹریمزم ہے نا.
جی دیکھیں کسی بھی ملک میں لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات, بھائی چارے کے, میوچل ریسپیکٹ کے, پیسفل کو ایگزسٹنس کے اس وقت ہوتے ہیں جب मुल्क में एक कानून होता है जिसको सब मानते हैं और जिस पर जिस हद तक मुमकिन है इंसाफ के साथ अमल दरामद किया जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे यहां तो वक्तन फवक्तन आईन की खिलाफ वर्जी नहीं, आईन को फाड़ दिया जाता है। तो वो जो कानून का एहतराम है वो तो ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो चुका है। दूसरा इम्कान था कि चलिए कोई कानून कोई आईन नहीं है, लोग एक ही नजरिए को मानते हैं, वो भी अभी हमने देख लिया कि मजहब का नाम तो शायद एक है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल दिया जाए ताकि हमारी इजाराधारी कायम रहे, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद में लोग अभी भी एक दूसरे को मुसलमान तो समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मुसलमान होने का मतलब क्या है और वो इस्लाम के कौन से वर्जन को मानते हैं, जाहिर है इसमें हमारे यहाँ बहुत कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। तो बेसिकली किसी सोसाइटी किसी मुल्क के कोहेसिवनेस के लिए, उनकी यूनिटी के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का जो एक मादा मसाला होता है, उसके लिए जो अनासिर चाहिए वो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। फिर एक और हादसा भी है और वो ये है कि फॉर वेरियस रीजंस, और उसमें मजहब प्रॉबेबली मजहबी अदम बर्दाश्त एक सर फहरिस्त है, हम अब एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी नहीं कर पाते। मैं तो जब भी इस तरह के मसाइल का हल सोचता हूं तो उसमें जो पहला कदम मेरे सामने आता है वो है अच्छी कम्युनिकेशन। मेरे और आपके दरमियान झगड़ा है तो इसका हल तो ऐसे ही हो सकता है ना कि मैं आपसे नरमी से बात करूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करूं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बयान करें। हमारे यहां तो मुसीबत ये है, आप ये देखिए, ये तमाशा मैं देखता हूं पाकिस्तान में कि अल्लाह ताला से तो पता नहीं कौन कौन डरता है कौन नहीं डरता, लेकिन एक कोई खलाई मखलूक है जिसे सारे डरते हैं, कोई भी उनका नाम नहीं ले सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि आप बात करेंगे आपको उठा लिया जाएगा, उठा क्या लिया जाएगा, ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा कि हड्डियां भी आपकी नजर नहीं आई। भाई साहब, तो ऐसे माहौल में, और फिर इस पर कोई एहतियात भी नहीं कर सकता। ये लोग करते हैं वो कि जिनको आपने अपने टैक्सों से कुछ चीजें फराहम की हुई हैं और उसके बावजूद वो बाइज्जत मोहतरम है, तो ऐसे कौम में इंसाफ आएगा कहां से? बच्चे कोई इम्कान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, मजहबी यूनिटी और नैरेटिव की कॉमन होना, ये तो बड़ी दूर की चीज है, इसके लिए तो हमें कोशिश करनी है। मुल्क में कानून का एहतराम नहीं है, अगर आईन के मुताबिक मामलात नहीं हो रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि मुल्क जुड़ के रहे और लोग इसमें कंफर्टेबल महसूस करें? सो मसाइल ही मसाइल हैं जी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा आसान है, दो लफ्जों में बयान करना है कि आईन कानून की पासदारी हो, लोग एक दूसरे की बात सुने, बट जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि easier said than done, तो ये मामला है।
सर, ये एक चैट में हमारे पास सवाल आया मरियम साहिबा का, ये लिखती हैं कि मैंने इस्लाम को नाफिज करने वाले नजरिए के हक में ये सुना है कि ये पूरी उम्मत सुकॉल्ड फिकर है, जबकि सेल्फ सेंटरनेस आमदियत को तरजीह देती है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपनी और अपने अकरबात की फिक्र करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
देखें, गुजारिश ये है कि अव्वल तो आमदियत किसी चीज का नाम नहीं, आमदी साहब एक दीनी स्कॉलर हैं जो अपनी बात को दलाइल के साथ पेश करते हैं, दूसरे की बात को तहम्मुल के साथ सुनते हैं और बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह की किताब को देते हैं। वो जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो दीन हमको अल्लाह ने दिया है इसका असल टारगेट मकसद तज़किया है, जिसके जरिए से इंसानों को जन्नत को हासिल करना है। ये तज़किया फर्द का भी है, ये तज़किया मुआशरे का भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुआशरे की बात नहीं करते, वो इस बात को उन लोगों के लिए लाजिम करार देते हैं जिनको माशरे में इख्तियार हासिल है कि वो खुदा के बताए हुए अहकाम के मुताबिक वो मामलात को चलाएं। लेकिन वो ये कहते हैं कि खुदा ताला के अहकाम जो इज्तमाईयत से मुताल्लिक हैं उनमें एक बहुत बड़ा हुक्म अमरुहुम शूरा बैनहुम कि उनका फैसला उनके आपस के मशवरे से होता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा उन लोगों से कि जो इस तरह के एतराजात करते हैं, सवाल करना, क्रिटिसाइज करना, ये तो सबका हक है और ये जरूरी भी है। जब आपको बात समझ में नहीं आई है तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आपको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, मगर ये कि गांधीयत और सेल्फ सेंटर्डनेस और ये क्या चीजें, इसका पता क्या फायदा होता है? इसका फायदा उन लोगों को होता है कि जो चाहते हैं कि वो अपने पहले से माने हुए नजरिए पर कायम रहे और अपने मानने वाले साथियों को भी मुतमईन रखें कि हमारी बात सही। वरना जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं, पहला कदम इस्लाह की तरफ, चाहे वो जात की इस्लाह हो चाहे मुआशरे की, वो ये है कि हम ऑनेस्ट हो जाए, हम अपनी कम्युनिकेशन में ऑनेस्ट हो, पोलाइट हो। हमें पहले मसला समझ में आएगा तभी तो इस्लाह होगी। आपके नजदीक हम लोग गलत बात कर रहे हैं तो भाई आप हमको तमीज तहजीब से हमारी बात समझाएं गलती, और अगर हम उसके बाद कोई गलत रवैया अख्तियार करें तो तब तो हमारा कसूर है। लेकिन ये बात क्या आप बात का आगाज ही ऐसे कर रहे हैं कि गाम दिया तो फलानी, क्या क्या गुफ्तगू का अंदाज है? ये किस दीन ने आपको सिखाया? हमारा दीन इस तरह की गुफ्तगू के अंदाज को कतन पसंद नहीं करता।
अस्सलाम वालेकुम, मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड। तो अमूमन जो हमारी राय है एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, वो नफरत अंगेज जज्बात से ही हम इसको समझते हैं कि एक्सट्रीमिज्म जहाँ पर भी होगा वहाँ पर नफरत पाई जाएगी। लेकिन अगर हम अपने माशरे में देखें तो जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इसको मोहब्बत का नाम देते हैं, जैसे जो लोग दीन के नाम पर निकलते हैं वो खुद को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन उनके जो रवैये होते हैं वो नफरत अंगेज होते हैं। कोई आम आदमी अगर उन रवैयों को देखेगा तो वो हरगिज इसको इश्क या मोहब्बत में नहीं कहेगा। और अगर हम इश्क की बात की जाए तो वहां पर भी हमें शिद्दत पसंदी नजर आती है, क्योंकि इकबाल भी कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इश्क इटसेल्फ एक एक्सट्रीमिस्ट एक्ट है। तो हम शिद्दत पसंदी को कौन से वे में देखें, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, और कौन से वे को फॉलो करें जो मुनासिब एक वे हो? शुक्रिया।
देखें, हर नफरत के जज्बे के साथ पीछे कोई मोहब्बत का जज्बा है। नफरत असल में मोहब्बत ही के नतीजे में पैदा होती है। आपको किसी से मोहब्बत है, किसी ने आपके ख्याल में उनके साथ ज्यादती की है, तो आपके अंदर उस ज्यादती करने वाले के लिए नफरत पैदा हो जाती है। तो ये जज्बात हैं, जिसके लिए पॉजिटिव होते हैं वो मोहब्बत हो जाती है, जिसके लिए नेगेटिव होते हैं वो नफरत हो जाती है। ये तो एक बात हुई। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां कहीं भी नफरत है वहां असल में मोहब्बत भी है, जिसके नतीजे में नफरत पैदा हुई है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि जज्बात को अपने हुदूद में रहने दें, वो अखलाकी, कानूनी और दीनी हुदूद के जो तय हो चुकी हैं, दीन में अल्लाह ताला ने तय की है, अखलाक में भी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एहसास को वदियत कर दिया है, और कानून जिस मुल्क का कानून है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारे दीन ने तो मुल्की कानून को रिस्पेक्ट करने का हुक्म भी दिया है। तो जज्बात बड़ी अच्छी चीज है। जज्बात ना हो तो बंदा एक बेकार सा फिलोसोफर होता है और बस वो या फलसफा बगाड़ता है या शायरी करता है। तो जज्बात ही इंसान को मोटिवेट करते हैं। लेकिन बहरहाल जज्बात को पाबंद होना चाहिए अकल का, जज्बात को पाबंद होना चाहिए उसूलों का। तो आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ बहुत से मजहबी एक्सट्रीमिस्ट जो फिर दहशत गर्द भी बन जाते हैं, दूसरी जानब देखा जाए तो वो इश्क नबी या इसी तरह के दूसरे जो उनके टारगेट्स नस्बुलैन या आप कहिए गोल्स हैं उनका वो जिक्र करते हैं, लेकिन उनको ये बताने की जरूरत है कि भाई किसी माँ के अपने बेटे के साथ मोहब्बत करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि उनको इजाजत दे दी जाए कि वो हमसाए के बच्चे का मुंह नोच ले। नहीं, आपको अपनी हदूद में रहना है चाहे आपके जज्बात कितने ही शदीद क्यों ना।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि हम तारीख में देखते हैं कि बहुत से जो मकातब फिक्र कायम हुए हैं, फॉर इंस्टेंस मार्क्सिज्म, उनका जो उसूल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, जैसे उनका इक्वालिटी था, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मदरसा फराही की एक राय है तो आप अपने फॉलोअर्स को क्या नसीहत करेंगे कि वो शिदत पसंदी इख्तियार ना करें आपके अफकार के मामले में? थैंक यू।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ा अच्छा सवाल। देखें, इसमें एक तो ये कि हमने अपने स्कूल को क्या नाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कंफ्यूजन है और ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि फिरका तो फिर कोई प्रॉपर नाम के साथ होता है, कभी हम कुछ कहते हैं कभी हम कुछ कहते हैं। दूसरा ये कि हम इस बात को एम्फसाइज करते हैं, आई एम श्योर पिछले बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया होगा, लेकिन शायद उनसे और उनके फॉलोअर्स के तौर तरीकों से सीख के हमारे बुजुर्गों ने इस पर ज्यादा एम्फसाइज किया है कि आप शख्सियात को कोई अहमियत ना दें। शख्सियात की अहमियत होती है नेचुरल, लेकिन बहरहाल उनको एक खास हद से ज्यादा ना हैसियत दें कि आप उनको डिफेंड करने के चक्कर में पड़ जाए। डिफेंड करना है तो नजरिए को भी करें, नजरिए को ही करें। बाकी उनको कहें जी के अगर आपने किसी शख्सियत के साथ एक खास किस्म की नेगेटिव फीलिंग रखी है तो अल्लाह ताला आप उन फीलिंग्स को नरम करे। तो पहली चीज तो यह है कि शख्सियात को एम्फसाइज करने की बजाय नजरियात और उनमें भी दलाइल उनको अहमियत दें। और नंबर टू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे माँ बहन कम्युनिकेशन हमेशा ठीक होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं अगर फर्ज कीजिए कि बाज लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में दूसरों से अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा ना करूं, और अगर कहीं मैं देखूं कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई हरकत हो रही है उसको भी मैं कॉशन करूं। और दूसरा, जिसके पास सवाल है वो अपने सवाल को पोलाइट तरीके से लेकिन क्लियरली बयान करे, और अगर एक जवाब पर तसल्ली ना हो तो दूसरी मर्तबा करे, और दूसरी ना हो तो फिर ले जाए उसको दसवीं मर्तबा करे। और अगर मेरे जैसा कोई शख्स तो जो बहरहाल उसका हौसला कम होता है बदतमीजी करे तो आप कहें सर ये आप ही का बताया उसूल है, आप तो उससे कर नहीं सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि फिरके वारियत जमाती तासुब पैदा होता है जब आप लोगों को शट अप कॉल्स देना शुरू कर देते हैं कि या आप माने या आप तशरीफ ले जाए, दफा हो जाए तो जरा सख्त लफ्ज़ तशरीफ। मेरा ख्याल है ये दोनों बातें जरूर बताने की। और फिर इसमें मजीद ये कि हम ये एम्फसाइज करते हैं और मेरा ख्याल हम ड्रामा नहीं कर रहे, अल्लाह का शुक्र है हम जेन्युइनली एम्फसाइज करते हैं कि सबको सुने और जिसकी बात जिस मामले में सही लगे उसको कबूल कर लें। मेरा ख्याल है फिरका ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फिरका बनने के आसार इसलिए नहीं है कि हम ये सारी बातें करते,
दारुल उलूम देवबंद इंडिया की तरफ से भी एक फतवा ये आया कि जावेद अहमद गामदी साहब उस्ताद मोहतरम गुमराह हैं, और अहले हदीस मकतब फ़िक्र की तरफ से भी किताबें शाया हुई हैं फितने गामदियत के नाम से। ये भी एक शिद्दत पसंदी है, तशद्दुद है। अब उस्ताद का ये सबक सब्र से, तहमल से, मोहब्बत से, मतानत से, संजीदगी से, ये सारे जवाब इसके देने हैं, जो मैं समझता हूँ कि कोई उसका असर नहीं होगा, बल्कि हम लोगों को एक दरमियानी राह निकाल लेनी चाहिए। शिद्दत पसंद रवैये के खिलाफ थोड़ी सी हम लोगों को भी शिद्दत बरतनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब,
इसकी कुछ इस इजमाल की कुछ तफसील कीजिए, यानी हम क्या करें?
दारुल उलूम देवबंद जो देवबंद में है ना हमारा दारुल उलूम देवबंद इंडिया का, मैं इंडिया से
बिल्कुल बिल्कुल
वहां से एक सवाल पूछा गया था उनको, तो फतवा नंबर 301 में एक फतवा यह आया दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ऑफिशियली कि जावेद अहमद गामदी साहब एक गुमराह शख्सियत हैं, इनके किताबों से एतराज़ किया जाए, इनको न सुनाया जाए और इस किस्म की सारी बातें। जमीयत अहले हदीस की तरफ से भी फितने गामदियत के नाम से किताबें शाया होते हैं, और आपके इतला के लिए यहाँ हुबली कर्नाटका में साउथ इंडिया में एक प्लेस है, और मैं पेशे के हिसाब से एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, तो यहाँ के मस्जिद में भी बाखदा खुतबा दे रहे थे, जुमा के खुतबे में गामदी साहब के खिलाफ बोल रहे थे एक मोहतरम, तो एक दो खुतबे के बाद मैं उनको एक नोटिस भेज दिया कि either you are going to stop it or shall I just pull you before the court. तो उनके वो जो खुतबा बंद हो गया उनका।
अल्लाह
बल्कि जमीयत अहले हदीस के पूरे ऑल इंडिया लेवल में इस नोटिस का चर्चा भी हुआ, और कुछ हद तक वो मदम भी पड़ गए, तो ये जरा हमारे तरफ से भी थोड़ा जरा होना चाहिए डॉक्टर साहब।
नहीं नहीं, ये देखें, ये जो आपने काम किया है, एटलीस्ट मुझे इस पर बिल्कुल कोई एतराज नहीं, और बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि आपने बिल्कुल कानून की हदूद के अंदर रहते हुए काम किया है, और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अगर हम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ एक्सट्रीमिज्म तो नहीं, एग्रेशन करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता मैं ही गुजारिश करूंगा कि ये जो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो महसूस कर रहे हैं कि ये बात कुछ आगे बढ़ रही है, वरना मैं आपको बताऊं, पहला जो रिस्पांस होता है वो ये होता है कि इन इनको अपनी मौत खुद मरने दो, और कुछ अरसे की बात है, उसके बाद ये बात आपसे आप खत्म हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि मजहबी दीनी हलकों को ये महसूस हो रहा है कि बात में वजन है, इस वजह से लोग सुन रहे हैं, और अब हमें कुछ ना कुछ एमरजेंसी की कुछ सूरत इख्तियार करके इसको खामोश करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आई एम श्योर के आप जितने वाकिफ हैं, आपको ये मालूम ही होगा कि गांधी साहब डेलस में उनके ऊपर जो एतराजात हैं उनके जवाबात दे रहे हैं, और वो जवाबात जो हैं वो बहुत उम्दा है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैंने एक साहब की जबानी सुना, मैं खुद भी डेलस गया हुआ था गांधी साहब के साथ, मुझे रिसेंटली 3 महीने रहने का उनके साथ शरफ हासिल हुआ, लेकिन एक साहब डेलस से आए थे, उन्होंने एक बात बयान की, तो मुझे खुशी हुई इसलिए कि कुछ मेरा अपना भी रुझान इस तरह का था। उन्होंने कहा कि गांधी साहब का कहना ये है कि अल्लाह ने ज़ाहिर तौफीक दी उनको, बहुत से अच्छे उन्होंने काम किए, चीज़ें लिखी, बड़े प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वो कहते हैं कि शायद मेरी जिंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट यही है एतराजात पे जवाबात, इसलिए कि इसके नतीजे में इतनी तफसील के साथ वो जवाबात दे रहे हैं, शायद इसी वजह से लोग सटपटा रहे हैं कि ये शख्स तो कुरान से और कुरान की पुरानी तफसीरों से और अहादीस के जखीरों से अपनी बात को साबित कर रहा है, तो इसको तो सिवाय इसके कि गुमराह करार दे के लोगों को डराया जाए कोई और तरीका नहीं है। लेकिन आई एग्री विद यू कि अगर कोई कानून के अंदर रहते हुए कोई इस तरह के काम भी किए जाएं जैसे आपने किया है, तो मेरा ख्याल है कि कोई कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है।
ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو انٹرپریٹ دونوں طرف سے کیا جاتا ہے، شدت پسند ایک طرف سے کرتے ہیں اور کچھ اس کو دوسری طرف سے کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ ہم مسلمانوں میں ہی زیادہ لوگ شدت پسند جو اس کی تفسیر ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو قرآن کو پڑھ کے اور کہتے ہیں کہ دس از اے ریلیجن آف پیس اور اسی لیے ہم اس کی طرف آنے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو شدت پسندی کی نظر سے دیکھتا ہے، غیر مسلم اکثریت اس کو یہ سمجھتی ہے کہ جی اس دین میں جتنا امن ہے، جتنا انسانی جان کی جو اور عزت اور آبرو کی پوزیشن ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے، تو اس طرح کیوں ہے کہ ہم مسلمانوں میں یوں ہیں اور غیر مسلموں میں دوسری طرف؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب.
دیکھیں میں پہلے تو دوسرے حصے کا، شاید وہ دوسرا حصہ تھا، اس کا جواب دیتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسا کیوں. شاید یہ پہلا حصہ تھا آپ کا سوال. مسلمانوں میں یہ اس لیے ہے کہ دو تین وجوہات ذہن میں آتی. پہلی تو یہ آتی ہے ذہن میں کہ اگر آپ کا پریولنٹ موجود نقطۂ نظر مذہب کا ایک خاص نہج کا ہو تو فلو سے الٹ ٹریول کرنا، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. لوگ ٹریڈیشن کو مانتے ہیں اور ٹریڈیشن پر چلنے ہی میں امان اور ایک پیس محسوس کرتے ہیں، کمفرٹ محسوس کرتے ہیں. یہ جو ٹریڈیشن کے علاوہ بات سمجھنے اور ماننے کا رجحان پیدا ہوتا ہے وہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کوسچن کرنا شروع کریں، آپ غور و فکر شروع کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ بات تو آپس میں کچھ کنسسٹنٹ نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ بیداری پیدا ہوتی ہے. انفارچونیٹلی شفقت صاحب، یہ تعداد لوگوں کی عام طور پر اس طرح کے لوگوں کی کم ہوتی ہے، تو وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ایک چل پڑا، کیوں چل پڑا، یہ بھی ایک ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے. پروبیبلی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان 1000 سال تک دنیا میں ڈومینیٹ کرتا رہا، یعنی دنیا کے اس بڑے حصے میں کہ جس میں مسلمانوں کو حکمرانی حاصل تھی، وہی تھے کہ جو حاکم تھے، انہی کے فیصلے نافذ ہوتے تھے، انہی کے علماء مفتی قاضی فیصلے سناتے تھے. یہ جو لفظ فتویٰ ہے اس کو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ اتنی سینکٹی کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ فتویٰ ایک زمانے میں ایسے ہوتا تھا جیسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب یہ فیصلہ نافذ ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، باقی حکمرانوں کی جو کارندے ہیں، جو پولیس ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، لا انفورسنگ ایجنسیز. تو ایک زمانے تک یہ رہا اور مسلمان غالب تھے، غیر مسلموں کو ویسے ہی وہ کافر اور اپنے سے کمتر گھٹیا سمجھتے تھے. ہوا یہ کہ گورے آ گئے، کلونیل ماسٹرز آ گئے، ذہنیت نہیں بدلی. کیوں نہیں بدلی؟ اس لیے نہیں بدلی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے لیے یہ اسٹریٹجی قبول کر لی کہ وہ غاروں میں چلے جائیں، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میٹافوریکلی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، اور وہ جو نئے ٹرینڈز تھے اس کو انہوں نے کافرانہ طریقے قرار دے دیا. چنانچہ آج تو خیر بہت فریڈم آ گیا ہے، بہت لوگ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ورنہ پتلون قمیض پہننے والوں کو، ٹائی پہننے والوں کو وغیرہ وغیرہ بہت سخت لب و لہجے سے پکارا جاتا تھا، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں، اور سید احمد خان کی طرح کے لوگوں کو بڑا بدنام کیا جاتا تھا. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک، میں یہ گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اگر آپ نے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ کو ذرا دنیا کی سیر کرائیں. پاکستان میں سر ہم کو نظری مسلمان آتے ہیں, جو بےچارے نان مسلم ہیں وہ تو اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور کوئی ہمارے پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ اصل میں انسان کو اس انٹرپریٹیشن کو ماننے اور قبول کرنے کی طرف مائل کرتا ہے کہ جو عام لوگ مان رہے ہیں, جو فلو کے ساتھ ہے, غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے اور مانی ہوئی چیزوں کو ڈاؤٹ کرنا, کوسچن کرنا, ایک طرح سے آپ کی طرف سے ایک گمراہ کن رویہ ہے. سو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے دوسری بات کی کوسچن میں, اس پہ میں اصل میں سوچ میں پڑ گیا. میرا خیال ہے کہ پروبیبلی غیر مسلموں کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو دین کا پیس کا مذہب سمجھتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں. ناٹ ایوری بڈی سر, میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم شیور کہ جو ہیں ان کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہے. میرا خیال ہے ان کو کوئی اچھے اسلام کو پیش کرنے والے لوگ مل گئے, ورنہ اللہ اکبر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. میں ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرا ایکسٹریمزم ہے, ناٹ اونلی ود ان پاکستان آؤٹ سائڈ پاکستان, یہ جو مثال کے طور پر امریکہ میں اور جگہوں پر جو ہمارے بارے میں ایک سختی کا رویہ جی کہ وہ اب جو تھی سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار وہ تو اب ختم ہو گئی, لیکن اب جو نیا ٹارگیٹ ہے وہ مسلمان ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی امریکہ کو کوئی اسلام سے, امریکہ کو اسلام سے کوئی ڈر ہے؟ اسلام سے کیا ڈر ہے بھائی؟ اسلام اگر اسلام سے ڈر ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ امریکہ والے آپ لوگوں کو اجازت دیتے کہ اپنے ملک میں آ کے آپ لوگوں کو کنورٹ کریں, مسلمان کریں, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ تو ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن مول لے کر اور اتنا بے پناہ موقع جو ہمیں ملا ہے, جو بعض لوگ اویل کر بھی رہے ہیں, اس کو ہم اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے. ان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے اب بھی اور مسلمانوں کے لٹریچر میں کہ جو پوری دنیا پر اپنے غلبے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی وہ ہم کو دبانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں, یہ کوائٹ اپارٹ فرام ادر ریزنز, یہ ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ ان کو طاقت ملے اور یہ ہم پر چڑھ دوڑیں, ہم ان کی طاقت کا خاتمہ کرتے ہیں. بٹ آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اس میسج آف پیس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی تعداد بڑھے. آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائز کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی تعداد میں, بڑا آئی تھنک بڑی تعداد میں نہیں ہے, وہ بڑی سے مراد والیوم ان کا بڑا ہوگا, بٹ دے آر ناٹ ان دا میجورٹی. میجورٹی جو نان مسلمس کی ہے وہ تو اسلام کو دیکھتی ہے ہمارے طور طریقوں سے, ہماری باتوں سے, ہمارے جو انداز ہیں ان سے, اور وہ تو ڈرے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک خوشائن بات ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے کہ پیس کا ایلیمنٹ لوگوں کو پہنچ رہا ہے.
شکریہ سر, آپ نے اتنی وضاحت سے چیزیں واضح کی ہم پر, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.
بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. جزاک اللہ.